بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد باب الأكل مع الخادم خادموں کے ساتھ کھانا کھانے کا یہ باب ہے۔ وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبہ عن محمد هو ابن زیاد سمعت ابا حریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال محمد ابن زیاد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، قال آپ نے ارشاد فرمایا اذا اتا احدکم خادمہ بطعامہ، جب تم میں سے کسی کے پاس اس کا خادم آئے بطعامہ کھانا لے کر، فإن لم يجلسه معه فلیناولہ اکلۃ او اکلتین او لقمۃ او لقمتین، اگر وہ اس کو اپنے ساتھ نہ بٹھا سکے تو اس کو ایک لقمہ یا دو لقمے کھانا دے دے، فإنہ ولیحرہ وعلاجہ، کیونکہ وہ بھی یعنی وہ خادم بھی اس کھانے کی گرمی کو اور اس کے بنانے کو، اس کے لیے اس نے مشقت کی ہے، یعنی اس کی گرمی اس کو پہنچی ہے اور اس کے بنانے کی مشقت اس نے اٹھائی ہے۔ اس حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خادموں کے ساتھ حسن برتاؤ کا حکم دیا ہے۔ یہ اسلام کی تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم ہے۔ لوگ کہتے ہیں اسلام کے بارے میں کہ اس میں تشدد، زیادتی، لوگوں کے حقوق نہیں ہیں، لیکن اتنے باریک حقوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں کہ جس سے اسلامی تعلیمات کا حسن بھی معلوم ہوتا ہے اور انسانیت کا لحاظ بھی جس سے جو ہے واضح ہوتا ہے۔ وہ حکم کیا ہے؟ وہ حکم یہ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کے پاس خادم ہو، نوکر ہو، خدمت کرنے والے ہوں، کھانا بنا کر لے کر آئیں گھر کے اندر، تو اعلیٰ درجہ یہ ہے، حسن اسلام کا تقاضا بھی یہ ہے، انسانیت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اس کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلائیں۔ بہت بڑی بات ہے آدمی کے لیے کہ اپنے نوکروں کو اپنے ساتھ اپنے دستر پر بٹھا دے، معمولی بات نہیں ہے، اور اسلام اس کا حکم دے رہا ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ہمیشہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدمی اپنے نوکر کو اپنے ساتھ بٹھائے، کبھی مہمان ہوتے ہیں، کبھی کچھ اور ہوتے ہیں، کبھی اپنی حیثیت کی وجہ سے آدمی طبعی طور پر ناگوار محسوس کرتا ہے اس کو، تو شریعت نے اس کا بھی پاس و لحاظ رکھا ہے۔ ایک طرف جو ہے نا خادم کا لحاظ رکھا ہے، تو دوسری طرف اپنے اس کے آقا کا بھی پاس و لحاظ رکھا ہے کہ بھئی اگر ٹھیک ہے اس میں ناگواری ہوتی ہو تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، لیکن یہ حکم دیا کہ ایک یا دو لقمے اس کو کھانا جو ہے نا کھلا دینا چاہیے، خود کھا رہا ہے تو اس کو بھی کھلانا چاہیے۔ پھر آگے اس کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ فإنہ ولیحرہ وعلاجہ، کیونکہ اس کی گرمی اس کو پہنچی ہے، کھانا جب بنا رہا تو اس کی مشقت، گرمی پہنچنا ہے، مشقت اٹھانا ہے، مطلب ایک ہی ہے، تو بنانے کے دوران میں اس نے مشقت جھیلی ہے، یہ جب کھانا بن کر تیار ہو گیا، آپ کے کھانے کے قابل ہو گیا تو آپ تو اس کو دور ہٹا دیں اور خود کھانے لگیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو یہ اسلامی تعلیمات کا حسن ہے کہ اس نے خادموں کے ساتھ اس طرح کا حسن سلوک کا حکم دیا، اور دوسری طرف انسانیت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، کھانے پینے والے انسان کے ساتھ آدمی جو ہے نا اچھے اخلاق کا معاملہ کرے۔ اور ایک وجہ علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ خادموں کے ساتھ بٹھانے کھلانے میں تواضع بھی جو ہے نا پائی جاتی ہے، آدمی کے اندر تواضع بھی پیدا ہوتی ہے اس کی وجہ سے، کیونکہ آدمی طبعی طور پر ناگوار محسوس کرتا ہے اس کو، تو اس کے اندر تواضع پیدا ہو جائے اور تواضع کی وجہ سے یہ کرنے والا بنے، اپنے صلاحیت کی بنیاد پر، اپنے مقام کے اونچے ہونے کی بنیاد پر جو ہے نا انسان کو زیادہ ہوا میں نہیں اڑنا چاہیے، کہ تواضع اپنے اندر پیدا کرے، ماتحتوں کے ساتھ جو ہے نا پھر اس طرح کا رویہ اختیار کرے کہ ان کو اپنے ساتھ شریک ٹھہرا لے۔ اس کے بعد باب ہے باب الطاعم، باب الطاعم الشاکر مثل الصائم الصابر، یہ باب ہے کہ کھانا کھانے والا شکر ادا کرنے والا وہ صبر کرنے والے روزے دار کی طرح ہے۔ فیہ عن ابی حریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس باب میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت منقول ہے۔ یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو حریرہ کی روایت کی طرف اشارہ کر دیا ہے और मुकम्मल हदीस नकल नहीं फरमाई, उसकी क्या हिकमत है वो अलग बात है। लेकिन हदीस पाक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है कि अत्ताइमु शाकिर मिथलु साइमि साबिर, शुक्र करने वाला, खाना खाकर शुक्र अदा करने वाला वो सब्र करने वाले रोज़ेदार की तरह है। मकसद क्या है इसका? मकसद ये है कि इंसान को शुक्रगुजार होना चाहिए। अल्लाह तबारक व ताला खाना खाने के बाद शुक्र अदा करे कि जिस ज़ात ने, जिस मालिक ने खाना खिलाया है तो उसका शुक्र भी अदा करें। और उसकी फजीलत ये बयान फरमाई कि जो रोज़ेदार होता है, सब्र करने वाला होता है, वो सब्र करता है खाने से, पीने से, और रोज़े में जो चीज़ें ममनू हैं उनके करने से, और इसके अलावा गुनाहों से भी ख़ास तौर पर बचने का हुक्म है। तो ये जो सब्र करने वाला रोज़ेदार है, इसकी बड़ी फजीलत है, सब जानते हैं। अल्लाह तबारक व खुद अल्लाह पाक फरमाते हैं कि रोज़े का जो सवाब है वो मैं खुद दूंगा क़ियामत में। अस्सौमुली व अना अज़ी बिही, फरमाया कि रोज़ा बंदा मेरे लिए रखता है तो उसका बदला भी मैं दूंगा क़ियामत में। तो बहुत बड़ी फजीलत है रोज़ेदारों के लिए, हत्ता कि मैदान महशर में जो है रोज़ेदारों के लिए दस्तरखान लगाया जाएगा, बाज़ अहादीस के अंदर है। लोग परेशान होंगे और अपने अंजाम के बारे में, अपने आक़िबत के बारे में, लेकिन कुछ लोग वो होंगे जो दस्तरखान पर खाना चुन रहे होंगे, उनके उनकी उनके लिए बशारत ये होगी। इतनी पहले ही से जो है ना उनको इतना सुकून और इतनी तसल्ली अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से अदा की जाएगी। तो ये जो फजीलतें हैं, तो जो आदमी पेट भरकर अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला है उसके लिए भी ये फजीलत है, बहुत बड़ी बात है। अब सवाल ये है कि भाई ये जो बंदा खाने से, पीने से, हर तरह के ख्वाहिशात से अपने आप को रोके हुए हैं, तो एक बंदा शुक्र करके पेट भर के खाना खा के उसके बराबर कैसे हो सकता है? सवाल तो ये समझने की बात ये है कि इसका तो पेट भरा हुआ है, उसका पेट खाली है बिल्कुल और भी चीज़ों से, तो ये उसके बराबर कैसे हो सकता है? तो उलमा ने लिखा है कि असल में यहाँ पर अजर के एतबार से बराबरी को बयान करना मकसद नहीं है, तशबीह सिर्फ एक ख़ास वस्फ के अंदर है। वो ये है कि खाना खाने के बाद शुक्र करने वाला जो बंदा होता है, तो वो सब्र करने वाले की तरह उसको सवाब दिया जाता है। मतलब ये नहीं है इसका कि सब्र करने वाले के बराबर इसको सवाब दिया जाता है। जिस तरह सब्र करने वाला बंदा अपने आप को खाने से, पीने से और चीज़ों से रोके रखता है, तो शुक्र करने वाला भी नेमतों को खाने के बाद अपने आप को अल्लाह तबारक व ताला के इस्तेहजार के साथ मुक़य्यद कर देता है, वो भी साबिर है एक माने में। क्योंकि जो चीज़ें अल्लाह ने उसको अता फरमाई हैं वो उसको अपनी मिल्कियत नहीं समझता, वो उसको अपना हक नहीं समझता, बल्कि वो अल्लाह तबारक व ताला की तरफ उसको मंसूब कर देता है। तो अपने खाने को, अपने पीने को, यानी उसको जो उसके ऊपर जो नेमतें हैं अल्लाह की और अल्लाह के जो इनामात हैं, जो एहसानात हैं, तो उसको अल्लाह तबारक व ताला के साथ मुक़य्यद कर देता है। तो इसलिए निस्बत अल्लाह की तरफ करने की वजह से अल्लाह तबारक व ताला पेट भरा होने के बावजूद इतना बड़ा, इतनी बड़ी यानी सवाब उसको अता फरमाते हैं, इतनी बड़ी फजीलत उसके लिए बयान फरमाते हैं। लेकिन ये बड़ी बात है, ऊपर भी इस तरह की हदीसें इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र फरमाई हैं कि खाने के बाद इंसान अल्लाह तबारक व ताला का शुक्र अदा करे, दुआएं पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी कफ़ाना वारवाना गैर मख्फ़ियन वला मख़फ़ूरिन वला मुस्तग़ना अन्हु रब्बना वला मुवद्दिइन वगैरह वगैरह, ये बड़ी फजीलत है। तो अब सवाल ये है कि शुक्र कैसे अदा करें, शुक्र किस तरह अदा करें? तो यहाँ जहन में रहना चाहिए कि शुक्र की एक सूरत तो ये है, उलमा ने लिखा है कि तीन दर्जे इसके हैं, बल्कि शुक्र होता है अलग अलग एतबारात से। एक होता है ज़बानी तौर पर शुक्र अदा करना, और एक होता है दिल के ज़रिए शुक्र अदा करना, और एक होता है इंसान का अपने आज़ा और अपने जिस्म के जवारेह के ज़रिए जो है ना अल्लाह तबारक व ताला का शुक्र अदा करें। तो शुक्र सिर्फ इतना ही नहीं है कि खाना खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आदमी कह ले। एक तो ये कहना ही है कि जिस ज़ात ने खाना खिलाया है, नेमतें दी हैं, ज़बान से उसका इकरार भी करे कि भाई ये अल्लाह की दी हुई नेमत है, तो इसलिए इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो ये तो करना ही चाहिए, ये ज़बानी शुक्र है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है हमारे लिए। काफ़ी तो उस वक्त होगा जब अल्लामा आइनी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं उमदतुल क़ारी के अंदर कि शुक्र करने वाला खाना खाने के बाद खाने से जो क़ुव्वत पैदा हो जाए उसका गलत इस्तेमाल ना करे। फरमाते हैं कि खाना खाने के बाद अल्लाह की इताअत में अपनी क़ुव्वत को लगाए और अल्लाह तबारक व ताला की हराम करदा चीज़ों से रुके, ये है हकीकी माने में शुक्र। ज़बानी तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह कह लिया, उसके बाद जो है ना फिर अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है तो वो सही नहीं है। जैसे कोई आदमी किसी को छुरी ला कर दे काटने के लिए, अब वही छुरी लेकर हम उसके पेट में अगर घूमते हैं, आपने इस्तेमाल के लिए दिया मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये तो नाशुक्री है। अल्लाह तबारक व ताला ने नेमतें दी हैं बंदे को, अब नेमतों को लेने के बाद आदमी फिर जो है अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री करने लगे, उन्हीं नेमतों का गलत इस्तेमाल करने लगे। अल्लाह ने पैसा दिया, अल्लाह की नेमत है, अब ये पैसा ले जाकर हम हराम चीज़ों में लगा रहे हैं, हराम चीज़ें इसके ज़रिए खरीद रहे हैं, हराम गोश्त इसके ज़रिए खरीद रहे हैं हम, हराम माल इसके, हराम कारोबार इसके ज़रिए अगर हम कर रहे हैं, हराम चीज़ें खरीद कर हम जो है ना खा रहे हैं, हराम ख्वाहिशात इसके ज़रिए पूरी हमारी हो रही हैं, تو یہ اللہ کی نعمت کا غلط استعمال ہے. تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں جو انعامات بندے پر کیے ہیں, جو احسانات کیے ہیں, زبانی طور پر بھی ان کا شکر ادا کرنا ہے, اس کے ساتھ ساتھ اپنے اعضاء کے ذریعے غلط عمل جو ہے نا اس کا ارتکاب نہیں کرنا ہے ہم کو, معمورات کو بجا لایا جائے اور منہیات سے بچا جائے. تو یہ اپنے اعضاء کے ذریعے شکر کی حقیقت ہے. اور تیسری چیز جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ دل کے ذریعے بھی آدمی شکر کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. دل کے ذریعے شکر کرنے کی صورت کیا ہے؟ کہ دل میں نعمتوں کے بارے میں اللہ کی طرف سے ہونے کا استحضار کرے کہ یہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی نعمتیں ہیں, اس کا استحضار ہو, یہ میری نہیں ہے, نہ میں اس کا حقدار ہوں. اسی لیے حضرت ایک جملہ کہتے ہیں خاص طور پر ہمارے مولویوں کی تنخواہوں کے بارے میں, ہماری ذہن سازی کے لیے اور تربیت کے لیے بھی, کہ کہتے تھے کہ ابھی بھی کہتے ہیں یہ بات کہ ہم کو جو بھی مل رہا ہے ہمارے اپنے استحقاق سے زیادہ مل رہا ہے. ویسے ہی ہندوستان میں, پاکستان میں اگر آپ دیکھیں گے تو مدارس کی تنخواہوں کا حال سب جانتے ہیں. کبھی جو ہے اس بارے میں نہ شکوہ ہم نے کیا ہے نہیں, لیکن ہماری اپنی تربیت کے لیے, ذہن سازی کے لیے بار بار یہ بات کہا کرتے ہیں کہ بھائی ہم کو جو بھی مل رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اپنے حق سے زیادہ مل رہا ہے, تو یہ کم نہیں ہے تمہارے لیے, اس کی نعمتیں پہلے ہی سے ہمارے اوپر بہت زیادہ ہیں. اب جو ہے نا مزید جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ نعمتوں کا مطالبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو مانگنا تو چاہیے ہمارے لیے, لیکن شکر ہم اس کا بجا رہے ہیں ایسا ہو نہیں سکتا. جو بھی ہے اس کو بہت کافی سمجھے آدمی, بہت وافی سمجھے آدمی, یہی بہت بڑی چیز ہے آدمی کے لیے. کفایت جو ہے نا آدمی کے لیے ہونی چاہیے, حرص نہیں ہونی چاہیے. تو دل کے ذریعے شکر یہ ہے کہ جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہیں ان نعمتوں کے بارے میں اللہ کی طرف سے ہونے کا استحضار کرے کہ یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان نعمتوں کی بنیاد پر آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں محبت کا, اللہ کے رسول کے بارے میں محبت کا جو ہے نا جذبہ اپنے اندر پیدا کرے. یہ بھی شکر کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ جس ذات کی طرف سے نعمتیں آئی ہیں اس کی عظمت دل میں ہونی چاہیے. پھر جب نعمتوں کا استحضار ہو گیا, معلوم ہو گیا کہ اس کی دی ہوئی ہیں, تو اس کی عظمت کا استحضار بھی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے, ہمارے دل میں ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد عقیدت کا, عقیدت ہو, عظمت ہو. اب ظاہر سے بات ہے کہ عقیدت اور عظمت پیدا ہوتی ہے تو پھر اس احکام کی اتباع آدمی کے لیے آسان ہوتی ہے, تو پھر احکام کی اتباع کرے اپنے اعضاء و جوارح کے ذریعے. تو یہ ہے شکر اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا. دل سے بھی شکر ادا کرنا ہے, زبان سے بھی شکر ادا کرنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اپنے اعضاء و جوارح کے ذریعے بھی شکر ادا کرنا ہے. شکر ضرور ادا کرنا چاہیے. اچھا, یہاں یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ لوگوں کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے, اللہ کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے. اللہ نے نعمتیں دی ہیں تو اللہ کا شکر بھی ادا کریں, اور لوگوں کی طرف سے بھی احسانات کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. خود ہمارے اپنے والدین ہیں, بھائی بہن ہیں, بیوی ہیں, دوست و احباب ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں, کھلا لیتے ہیں, پلا لیتے ہیں, ضروریات میں جو ہے نا کام آ جاتے ہیں, تو ایسے موقع پر ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے. حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا تو وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا. تو اس لیے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھی شکر گزاری کا معاملہ ہونا چاہیے. اور نعمتوں کا اظہار, حدیثوں میں یہ بھی ہے, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نعمتوں کا اظہار, نعمتوں کا زبان پر ذکر, یہ بھی شکریہ ادائیگی کے لیے کافی ہے. آپ نے دیا ہے, بھائی آپ نے جو ہے نا مجھے پانی کا بوٹل لا کے دے دیا, شکریہ آپ کا, یا بھائی یہ بڑی اچھی شخصیت ہیں, خدمت کرتے رہتے ہیں, یہ بھی جو ہے نا شکریہ کی ادائیگی کے لیے کافی ہے. یا آپ کا پانی لانا جو ہے نا ہمارے لیے سہولت کا باعث بن گیا. تو جو بھی ہو, جس نعمت کا, جس احسان کا کسی کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے, اس کا اپنی زبان کے ذریعے تذکرہ, یہ شکر کی ادا کرنے کے لیے کافی ہے. اللہ تبارک, ویسے تو کسی کا شکریہ ادا کرنا بڑا مشکل کام ہے. حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر کو نصف دین کہا ہے, معمولی چیز نہیں ہے. یعنی دین جو ہے نا دو چیزوں سے قائم ہے, یا دین جو ہے نا قائم نہیں ہے بلکہ صبر جو ہے نا وہ آدھا دین ہے, شکر آدھا دین ہے. حدیثوں میں یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمائی ہے, آدھے دین سے تعبیر فرمایا گیا احادیث کے اندر. اب اندازہ لگائیے کہ معمولی چیز نہیں ہے کہ دین, اگر آدھا دین اس کو کہہ دیا گیا ہے تو ایک تو اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے, اس کا اندازہ اس کے ذریعے ہوتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ادا کیسے کرنا چاہیے آدمی کو. پھر جب آدھا یہ دین ہے تو یہ آسان چیز نہیں ہے کہ اس کو آدمی ادا کر سکے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اتنی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے. لیکن اگر کوئی کرے گا تو پھر اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں بھی اتنی زیادہ ہوں گی. پھر تو لوگوں کا شکر بھی ادا کرنا ہے اور بندوں کا شکر بھی ادا کرنا ہے, اور خاص طور پر ہمارے اپنے خاندانی معاملات کے اندر اس کا احساس ہونا چاہیے بہت زیادہ, کہ بھائی ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہوتے ہیں ان میں, خاص طور پر میاں بیوی کا معاملہ ہے, والدین کا معاملہ ہے, بھائی بہنوں کا معاملہ ہے, کہ ان میں ایک دوسرے کے شکر گزار ہونا چاہیے. خواتین کے بارے, مردوں کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو بھی قدردان ہونا چاہیے. عورتوں کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا کہ ان کو بھی قدردان ہونا چاہیے. حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری میں کتاب الایمان میں ایک روایت ہے باب کفران العشیر کے عنوان سے, کہ وہاں آپ نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کو میں نے دیکھا کہ جہنم میں اکثر تعداد عورتوں کی ہے. صحابہ نے پوچھا کہ رسول اللہ کیوں ہیں, تو حضور نے فرمایا کہ یکفرن العشیر, पहले फरमाया कि यकफरुना, वो नाशुक्री करती हैं, कुफ्र करती हैं। तो साहबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह, क्या अल्लाह का इनकार करती हैं? कहने लगे कि नहीं, यकफरुनल आशीर व यकफरुनल एहसान, ये दो बातें इशारा फरमाई आपने कि वो अपने शोहरों की नाफरमानी और नाशुक्री करती हैं और एहसान की नाशुक्री करती हैं। जो नियमतें अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से दी गई हैं, शोहर के जो इनामात एहसानात होते हैं, बहुत बड़ी बात है कि कदरदान उनका होना चाहिए। फिर आगे आपने ये बात भी इशारा फरमाई है कि लो अहसन तदहरा, अगर तुमने लो अहसन तहदाहन्ना अदहरा इलादहरा, इस तरह के अल्फाज हैं कुछ हदीस में, कि अगर तुम ज़िंदगी भर भी उनके साथ एहसान करते रहोगे, और उसके बाद फरमाया कि अगर औरत ने उसके बाद जो है ना तुम्हारी तरफ यानी कोई चीज़ ऐसी देख ली जो उसको नागवार गुजर गई, तो वो ये फ़ौरन कह देती है कि भाई मार आई तो खैरम मिन मार आई तो मिनका खैरन कत्तू, कभी आपसे कोई भलाई नहीं मिली मुझे। बढ़िया बड़ी बड़ी आसानी के साथ जो है ना जुमला ये हदीस में हुजूर इरशाद फरमा रहे हैं, मार आई तो मिनका खैरन कत्तू, कि आपकी तरफ से तो कभी कोई चीज़ हुई नहीं हमारे लिए। मैं बड़ी नाशुक्र, फरमाया कि ये एक सबब है उनके जहन्नम में जाने का, तो इसलिए ख़ास तौर पर इसका अहतमाम करना चाहिए। और बाद अहादीस में यह भी है कि तुकफिरन अल्लान व तकफरन अलाशीर, दो वजूहत हैं, एक वजह तो यह है कि नाशुक्री होती है और दूसरी वजह यह है कि ज़बानों पर लान तान ज़्यादा होती है, तो इसलिए ख़ास तौर पर इस बात का अहतमाम होना चाहिए कि ज़बानें पाकिज़ा हों और शुक्र जो है ना ज़बानों के अंदर हो, ज़बान पर जारी हो, शोहरों का भी। अच्छा, दूसरी एक तरफ तो औरतों के लिए यह हक़ है, मर्दों के लिए भी हकूक़ हैं कि भाई औरतों के साथ हुस्न सलूक करें, एहसान करें उनके। ये आमतौर पर हमारे यहाँ तो बहुत घरेलू मामलों को लेकर बहुत ज़्यादा ये चीज़ें चल रही होती हैं, खाने वगैरह बनते हैं, खाने पर शुक्रगुजार होना चाहिए ज़िंदगी भर। एक मरतबा एक मैसेज मैंने पढ़ा था, बड़ा मज़ेदार जो है ना मैसेज था वो, तो उसमें यह था कि भाई अगर बीवी जो है ना आदमी के साथ 20 साल 25 साल अगर रहे तो कितनी रोटियां वो डालती हैं उसका अंदाज़ा जो है ना बताया गया था, उसमें कितने टन आटा गूंदती है उसका अंदाज़ा बताया गया था, और कितने जो है ना बर्तन वो धोती है, और कितने जो है ना बच्चों की सफाई है, घर के बनाने खाने पीने का 3 टाइम के खाने पीने का नज़म है। तो अगर उसका हिसाब लगाया जाए तो वो टनों मनों में चल रहा है वो, और आदमी को ज़िंदगी भर एहसास नहीं होता है, एक दूसरे की नाकदरी नाशुक्री में ही हम गुजार देते हैं कि भाई तुमने क्या किया तुमने क्या किया। तो एक दूसरे की कदरदानी ज़रूर, ये मामूली चीज़ नहीं है कि एक नौकर की तरह ज़िंदगी गुजारे, 3 टाइम खाना हो रहा है, बहुत बड़ी बात है भाई, घर की देखभाल है बहुत बड़ी चीज़ होती है, और फिर बच्चों को देखना, उनको पालना, उनकी परवरिश करना, उनकी तरबियत करना, यह बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो इन चीज़ों में कदरदान होना चाहिए, और फिर इसके ज़रिए अल्लाह तबारक व ताला जब शुक्रगुजारी का मिजाज होता है एक दूसरे की ज़बानों पर, तो हालात भी अल्लाह तबारक व ताला मुआफिक बनाते हैं, फिर शुक्र की बरकत अलग होती है, आप लोगों के साथ शुक्री अल्लाह के साथ भी शुक्र करें नेमतों में इजाफा होता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा उनके पास एक आदमी आया, आकर कहने लगा कि अल्लाह तबारक व ताला की इतनी नियमतें हैं, इतनी नियमतें हैं कि अब मुझसे संभाली नहीं जा रही हैं, अब मुझसे संभाली नहीं जा रही, मैं क्या करूँ, मुझे नहीं चाहिए कि मैं क्या करूँ। वही तो मूसा ने कहा कि अल्लाह की नाशुक्री करो, फरमाया कि ये तो नहीं हो सकता। कहने लगे कि फिर नेमतों में भी कभी होने वाली नहीं है तुम्हारी, नेमतों में इजाफा होता रहेगा, फिर ये शुक्रगुजारी करोगे लइन शकर तुम लाजीदन्नकुम वला इन कफरतुम इन अदाबी लशदीद, मेरा शुक्र अगर करोगे तो फिर नेमतों में इजाफा होता रहेगा, ये अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से जाबता और कायदा है। तो यही चीज़ अगर हम आपसी मामलात में अपनाते हैं तो इसके असरात भी इस तरह के रहनुमा होते हैं, मुआफिक असरात जो है ना जाहिर होने लगते हैं, फिर आपसी अगर मामलात एक दूसरे किस तरह शुक्रगुजारी के अगर हो जाएँ, जबानी तौर पर दो जुमले कहना है कोई मुश्किल काम नहीं है, और ये न होने की वजह से आपस में बड़ी गलत फहमियाँ होती हैं, ताल्लुकात बड़े ख़राब होते हैं। इस पर एक बात याद आई, एक मरतबा एक साहब चले गए मस्जिद, तो मौलाना साहब ने जुमे में तकरीर फरमाई कि भाई शुक्रगुजार होना चाहिए, ख़ासतौर पर ख़वातीन के सिलसिले में उनके जो खिदमात होती हैं मर्दों के लिए वगैरह वगैरह, उनके पकवान की कदर करना चाहिए, खिलाने पिलाने के बारे में जो है ना उनका एहसानमंद होना चाहिए। वो शख्स आया घर को, और घर को आने के बाद अब वो दस्तरखान पर जो भी था, इत्तफाक से उस दिन बहुत ही हल्का फुल्का खाना रखा हुआ था, दाल वगैरह रखी हुई थी, तो अब उसके बाद उसके तारीफ़ें शुरू हो गई कि बड़ी ज़बरदस्त दाल है, आपका बड़ा एहसान है, इतना अच्छा बनाया आपने, पता नहीं कैसे माशाल्लाह से जो है ना अल्लाह ताला ने आपके हाथ में मज़ा रखा, फुला रखा फुला रखा। तो बीवी को गुस्सा आ गया, वो बेलन ले आई लेके जो है ना उसको मारा, तो शौहर ने कहा कि अरे भाई मैं तो आपका शुक्रगुजार हो रहा हूँ और आप मुझे मार रहे हैं। तो कहने लगा कि भाई, वो औरत ने कहा, मैं 25 साल से तुम्हारे साथ हूँ, खाना पका रही हूँ और खिला रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, कभी तुम्हारी ज़बान से जो है ना एक लफ्ज़ नहीं निकला, आज पड़ोसन के पास से क्या दाल आ गई, तुम्हारी ज़बान जो है ना तारीफ़ से थक नहीं रही है उसकी। तो पड़ोसन के पास से दाल आ गई है, तुम्हारी ज़बान थक नहीं रही है तारीफ़ से, तो इसलिए पहले ही से जो है ना अगर हम शुक्रगुजारी का मिजाज बना लें तो यह हालत नहीं होगी। फिर एक और बात याद आई है, थानवी रहमतुल्लाह अलैह का एक किस्सा है कि एक मरतबा एक साहब उनके पास चले गए हजरत के पास, तो शक्कर वगैरह लाई लाकर हजरत को दे दिया, तो हजरत ने भी खा लिया, हदिया था, और साथियों को सबको खिला दिया। तो जैसे ही हजरत ने खिला दिया, शक्कर ख़त्म हो गई, तो वो बैठ गया कि भाई मुझे बैत कर लो, तो हज़रत का मिजाज नहीं था बैत करने का इस तरह, कि बयानात में हम सुनते रहते हैं, तो इसरार करने लगा, कहने लगा कि या तो बैत कर लो या फिर जो है ना मुझे शक्कर वापस करो। तो हज़रत ने कहा कि भाई ये क्या बात है, पहले ही बताना चाहिए था तुमको। तो उसने कहा कि आपको पूछना चाहिए था पहले से, फिर आपने पूछा नहीं, मैंने बताया नहीं। तो उसने कहा कि ठीक है करते हैं। पूछा कि कितनी शक्कर कितने की थी या कितनी शक्कर थी वो? तो कहा कि भाई वो नहीं चाहिए मुझे। हज़रत का इरादा यह था कि मंगाएंगे उतनी शक्कर दे देंगे। कहने लगा कि दो ही सूरतें हैं, या तो पेट में गई शक्कर वापस चाहिए या फिर जो है ना बैत कर लो। तो कहा कि भाई अच्छा ठीक है, बैत कर लेते हैं। तो हज़रत ने बैत कर लिया। जैसे ही बैत की तो कहने लगा कि मुझे वजीफ़ा दो। तो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह वजीफे नहीं देते थे बैत होते ही फ़ौरन, यानी दीगर अखलाक की तरफ जो है ना तवज्जो जो है ना मबजूल करवाया करते थे, तवज्जो दिलाते थे कि ये चीज़ें करो, हुकूक अदा करो, फ़लाँ करो फ़लाँ करो। कहने लगा कि वजीफ़ा दो। अब मान ही नहीं रहा, नहीं तो शक्कर चाहिए वो। तो कहने लगे अच्छा ठीक है भाई। तो हज़रत ने वजीफ़ा दे दिया। अब वजीफ़ा देने के बाद उसके बाद कहने लगा कि भाई तबरुक चाहिए मुझे। तो अब चारा ही नहीं था वहाँ पर हज़रत का। तो उसके बाद फरमाया ठीक है, तबरुक के तौर पर हज़रत ने उसको एक तस्बीह दे दी। उसके बाद कहने लगा कि खिदमत भी करूँगा। असल में हज़रत करते नहीं थे ये चीज़ें, बहुत बाद में जो है ना मेहनत करने के बाद, ताल्लुक़ कायम होने के बाद, पुराने होने के बाद ये चीज़ें हासिल होती थी। तो चौथे नंबर पर उसने ये किया कि भाई आपकी खिदमत भी करूँगा। तो फरमाया कि अब चारा ही नहीं है मेरे लिए तो कुछ भी, तो कर दिया उसको कि भाई ठीक है, जो भी खिदमत का मौका था हज़रत ने मौका दे दिया। उसके बाद वो चला गया। उसके बाद फरमाया कि बड़ी पक्की किस्मत थी इसकी कि भाई ये जो चीज़ें मैं करता नहीं हूँ करवा के चला गया। आदमी का एहसानमंद होना, यानी बड़े हमारे तरह एहसान हो गया, तो उनका मिजाज तो ऐसा था कि बड़े सख्त मिजाज थे बज़ाहिर, बड़ी आसानी के साथ रद्द कर दिया करते थे, जवाब देना चाहे तो जवाब दे देते थे। लेकिन एहसान है तो एहसान का शुक्र, यानी शुक्रगुजार होना चाहिए, एहसानमंद होना चाहिए। इसलिए हज़रत हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह का एक मक़ूला भी है, वो फरमाते थे हज़रत थानवी के बारे में ये बात कहते थे कि अशरफ अली ठंडा पानी पियो। फरमाते थे कि पानी गर्म भी पियेंगे तो अल्लाह का शुक्र अदा करोगे, लेकिन ठंडा पानी पियेंगे तो ठंडा पानी जाकर तुम्हारे दिल को सैराब करेगा, तुम्हारे जिस्म को सैराब करेगा, तुम्हारे अंदर नशात पैदा होगा, तो उसके बाद जो शुक्र अदा होगा उसकी नोयत अलग होगी। गर्म पानी पीने के बाद जो है ना वो दिल को सुकून और करार महसूस नहीं होगा, वो नशात महसूस नहीं होगा, तो जो शुक्र अदा होगा तो उसकी कैफियत अलग होगी। इसलिए हमारे बड़े इस बात की तरफ एहतमाम दिलाते थे कि ज़ाहरी तौर पर भी इंसान को अपने कल्ब व दिमाग के तौर पर भी इस तरह का शुक्रगुजार होना चाहिए, इसकी बड़ी फजीलतें हैं। तो बहरहाल शुक्र गुजारी का मामला होना चाहिए अल्लाह तबारक व ताला के साथ भी, बंदों के साथ भी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अत्ताइमु शाकिर मिथलु साइमिस साबिर, कि शुक्र करने वाला, खाना खाकर शुक्र अदा करने वाला ये ऐसा ही है जैसा कि सब्र करने वाला रोज़ेदार होता है। उसके बाद बाब है, बाबुन वर्रजुलु युदा इला तआमिन फयकूलु वहादा माई, ये तो इससे पहले गुजर चुका है। इस बाब में ये मजमून है कि किसी आदमी को खाने की तरफ बुलाया जाए और कह दिया जाए कि भाई ये भी मेरे साथ है, यानी तुफेली का बयान है खाना खाने के बारे में, कि अगर साथ में चले जाएं और खाना खिलाया जाए तो उसके लिए खाना खाना भी जायज़ है। तो दो रिवायतें इस हवाले से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, तर्जुमा करेंगे हम बस काफ़ी हो जाएगा इंशाल्लाह। तो वक़ाल अनस इदा दखलत अला मुस्लिम ला युत्तहम फकुल मिन ताआमिही वशरब मिन शराबिही। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि जब तुम किसी आदमी के पास जाओ जिसको मुत्तहम न किया जाता हो, यानी खाने के बारे में जिस पर इत्तहम मुत्तहम न हो कि भाई खाना सही है, उनका आदमी को इत्मीनान और यकीन हो, तो फिर फकुल मिन ताआमी ही वशरब मिन शराबी ही, तो वहाँ खाना भी तुम खा लो और वहाँ जो है ना अगर मशरूब है पानी है तो वो भी पी सकते हैं। एक रिवायत तो यह है। दूसरी रिवायत ये जिक्र फरमाई, हद्दसना अबू मसूद अल अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु, अबू मसूद अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यह रिवायत बयान की है। कान रजुल मिन अल अंसारी युकना अबा शुआइब, अंसार में से एक शख्स था जिसका नाम अबू शुआइब था, जिसकी कुन्नियत अबू शुआइब थी। वकान लहू गुलाम लहाम, और अबू शुआइब नाम का जो शख्स था उसके पास एक गुलाम था जो गोश्त बेचा करता था। फ़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हुजूर के पास आए, वहू अफ़ी असहाब ही, और आप सल्लम अपने असहाब के साथ थे। तो फ़ार रफल या फ़ार रफल जो आफ़ी वजह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब वो आए तो हुजूर के चेहरे में उनको भूख महसूस हुई, पहचान लिया उन्हें हुजूर भूखे हैं किसी वजह से महसूस हो गया। तो फतह इला गुलाम लहाम, तो अपने जो है गोश्त बेचने वाले गुलाम के पास गया। फ़काल और कह, वो गए और कहने लगे, इसना अली तआमन यकफ़ी खमसतन, कि खाना बनाओ जो पांच लोगों के लिए काफ़ी हो जाए। लाली अदउ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामिसा खमसा, ताकि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाऊं जो पांच लोगों में से पांचवें शख्स होंगे, यानी मुकम्मल सराहत कर दी। इससे एक बात ये मालूम होती है कि भाई कितने मेहमान आ रहे हैं, सही अंदाज़ा लगा कर आदमी को अहतमाम करना चाहिए खाने का, ताकि कमी भी ना हो। तो हुजूर पांच लोग आएंगे, हुजूर पांचवें हैं उनमें से, छठे नहीं हैं ये मतलब है। तो फसना लहू तुआमन, तो उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए थोड़ा सा खाना बना दिया। तो मैं आता हूँ फिर आपके पास वो आए सहाबी, फदाऊ और आपको बुलाया, फतबियाहुम रजुलुन, तो आप तो एक शख्स जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि यानी सहाबा के पीछे चल दिया। तो फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अबा शुआइब, तो हुजूर ने फरमाया कि अबू शुआइब, इन रजुलन तबियाना, एक साथी हमारे पीछे आ गए हैं, फ़इनशीता अज़िनत लहू, अगर आप चाहें तो उनको इजाज़त दे दें, व इनशीता तरकतहू, और अगर आप चाहें तो उनको छोड़ दें। क़ाला, तो अबू शुआइब ने कहा, ला बल अज़िनत लहू, नहीं बल्कि मैं उनको इजाज़त दे देता हूँ। तो इस हदीस में जो बात इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि भी जिक्र करना चाह रहे हैं वो ये है, एक तो ये है कि खाने यानी खाने के बारे में इत्मीनान हो तो खाना खा लेने में कोई हर्ज नहीं है, आदमी को ज़्यादा तहकीकात में नहीं पढ़ना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि बाद दफ़ा ऐसा होता है कि मेहमान आ जाते हैं, हम खुद किसी जगह दावत में हैं तो हमको दावत है, अचानक हमारे पास खुद मेहमान आ गए, तो उनके लिए खाने का नज़म करना होता है, साथ में ले लेते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। तो लेकिन उसमें बुनियादी तौर पर एक दो चीज़ें जहन में रखने की हैं, वो ये है कि किसी शख्स को जब हमारे साथ खाने के लिए ले जाएं तो मेज़बान को इत्तला दे देनी चाहिए कि भाई हमारे साथ फ़लाँ शख्स है, अगर आपकी इजाज़त है तो लाएंगे, नहीं इजाज़त है तो नहीं लाएंगे। और उसके लिए भी बगैर इजाज़त के खाना, तो तुफैली के लिए बगैर इजाज़त के खाना खाना जायज़ नहीं होता, दूसरे का खाना कैसे खाएंगे भाई जब उसको दावत ही नहीं है। ख़ास तौर पर इसका एहतमाम करना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान में इस तरह की बहुत सी दावतों में अमूमी एक रिवाज है, लोग घुस जाते हैं, दाखिल हो जाते हैं और उसके बाद अंदाज़ा नहीं होता है, मेज़बान परेशान हो जाता है कि भाई क्या करें। एक साहब जो है महसूस कर लिए एक दावत के अंदर कि भाई काफ़ी लोग जो है ना अनजाने महसूस हो रहे हैं, दावत थी, तो उन्होंने कहा कि भाई कुछ इलाज तो करना चाहिए इन हजरात का, जो हजरात बाहर के हैं उनको बाहर भिजाना चाहिए। तो उन्होंने ये किया, दावत में ठहर गए, लोगों से मुखातब हुए और कहने लगे कि भाई जो दूल्हे वालों की तरफ से वो ठहर जाएँ, वो हाथ उठाएँ। उन लोगों ने हाथ उठाया, फिर उसके बाद कहा कि भाई जो दुल्हन वालों की तरफ से वो भी हाथ उठाएँ, तो उन लोगों ने भी हाथ उठा लिया। तो कहने लगे कि भाई ये जो लोग हाथ उठाए मैं बाहर चले जाएं, क्योंकि ये शादी वलीमा नहीं, ये अकीक़े की दावत है। तो इसके ज़रिए पहचान अच्छी होगी। तो इस तरह बाज़ाब्ता करना पड़ता है। अब हमारे यहाँ मैंने तो देखा है कि बाद निगरान भी होते हैं लोगों को पहचानने के लिए, बाज़ाब्ता दावतों में निगरान होते हैं कि भाई कोई गैर, जाहिर सी बात है कि आदमी खाना जो बनाता है महदूद लोगों के लिए बनाता है अंदाज़ा कायम करके, अब 50 अफराद भी अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो तंगी दुश्वारी हो जाती है। तो बहरहाल, तो इसलिए मेज़बान की पहले इजाज़त या उसको इत्तला देना ज़रूरी है, बग़ैर इजाज़त के खाना नहीं खाना चाहिए आदमी को, और इजाज़त दे दे तो बिला तकल्लुफ़ खा सकते हैं। एक मसला तो ये है। दूसरा ये है कि बाद दफ़ा ऐसा होता है कि बेतकल्लुफ़ी इतनी होती है कि बग़ैर इजाज़त के दाने में उसको हर्ज नहीं महसूस होता, नागवारी महसूस नहीं होती है, तो बग़ैर इजाज़त के ऐसा शख्स जा सकता है, खा भी सकता है। तो ये तो फैली के बारे में जो है इससे पहले भी बातें आ गई हैं। अल्लामा ख़तीब बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की एक किताब है बाज़ाब्ता तुफैलियों के बारे में, बाज़ाब्ता उन्होंने किताब लिखी है, तो उसमें जो है कई चीज़ें लिखी हैं कि तुफैली किसको कहते हैं, वो सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ, उन लोगों के वाकयात क्या क्या हैं, उन लोगों की वसीयतें भी हैं अपने लोगों को जो उन लोगों ने की है कि दावतों के जाने के बाद क्या करना चाहिए वगैरह वगैरह। बड़ी तफसीली किताब है और मज़े की किताब है वो। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। चलो दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लम। ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد حمدا مع دوامك ولك الشكر شكرا مع دوامك. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اشف مرضانا يا رب العالمين. اللهم اقضي حاجاتنا يا رب العالمين. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلي وسلم وبارك على سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين.